ओम शांति, ओम शांति। तीसरे बारी भी बोले ओम शांति। तीन बारी ओम शांति किस भाव से बोली, हमारा जीवन मन, वचन और कर्म तीनों से ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं का पता चलता है। अपनी चेकिंग करें तो हमारे मनसा में कितना मन शांत, शीतल और शुद्ध है, एकाग्र है। जब शीतल, शुद्ध, एकाग्र होता है तो वाणी में मधुरता, मन की शुभ भावना से बोल जो होंगे न केवल मधुर होंगे परंतु कल्याणकारी होंगे। वचन वचन नहीं, वाक्य वाक्य नहीं, परम परम पिता परमात्मा के महावाक्यों का मुख से वर्णन होगा। और कर्म, हमारे कर्म योगी बनकर कर्म श्रेष्ठ होंगे और उस श्रेष्ठता से दूसरी आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी और स्वयं में भी संतुष्टि होगी। तो वो शांति संतुष्टता भरी शांति, पहली ओम शांति मन की शुद्धि, शीतलता और स्वधर्म की शांति, जो कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। दूसरी शांति, शांति का पाठ पढ़ने वाले खाली नहीं पर शांत स्वरूप से जो बाबा का के मधुर महावाक्य हैं वो हमारी वाणी में जो भी बोलेंगे वो ज्ञान सहित बोलेंगे, समझ से बोलेंगे, कम बोलेंगे, कल्याणकारी बोलेंगे। तो वो सेकंड शांति वाणी की शांति है अथवा वाणी की शक्ति है। और तीसरी वाली शांति कर्म में श्रेष्ठता और संतुष्टता। ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, कुछ किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, कोई घर का उत्सव होता है, ब्राह्मण विधि पूर्वक कार्य करता है, खुशी होती है, संतुष्टि होती है। तो यहां हम कर्म करते, कर्म योगी बन के कर्म करते हैं तो हमारे कर्म से न केवल हमको संतुष्टता होती है पर दूसरी आत्माओं को भी संतुष्टता होती है, खुशी मिलती है। दूसरी बारी तीन बारी ओम शांति बोलने का मतलब कि आत्मा सिर्फ मन नहीं है, मन की शांति की बात नहीं है खाली, आत्मा सिर्फ मन तो नहीं है ना, आत्मा तो बुद्धि भी है। आत्मा माना तीनों ही कंबाइंड शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो हमारा जब हम कर्म योगी बन रहे हैं तो हमारे हमको मन का संकल्प में कितनी श्रेष्ठता है, संकल्प है उस संकल्प में दृढ़ता कितनी है। मन माना भव की स्थिति कितनी है, मन लगा करके मैं कर्म कर रही हूं, कर्म करते कर्मातीत बनने के लिए तीनों का संबंध है। कर्मातीत सिर्फ कर्म करके नहीं, कर्मातीत का अर्थ सिर्फ से बाहरी कर्म योगी की बात नहीं है। कर्म करते कर्मातीत, तो कर्म इंद्रियां जो हमारी हैं उसमें ये जो हमारी कर्म इंद्रियों का कर्म है, कर्म इंद्रियों के कर्म माना एक्शन है, तो हमारी हर एक कर्म इंद्री दस इंद्रियों का राजा, हम दशरथ हैं, दस इंद्रियों वाले राजा दशरथ। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, समझते हैं इस बात को। ज्ञान इंद्रियां माना जिसको यूज करने से हमारी समझ बढ़ती है, महसूसता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, इसलिए ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। आंख से देखा तो बुद्धि ने पहचाना रंग सफेद है या लाल है, पीला है या नीला है, फूल खिला हुआ है प्लास्टिक है या सच्चा फूल है, तो सुगंध ने देखा ना, आंख ने तो रंग देखा, नाक ने क्या किया, कर्म कौन सा किया, सुगंध का काम किया। मुख दो काम करते हैं, दो काम कौन से करता है, एक अंदर डालने का दूसरा बाहर निकालने का। खाते हैं तो समझते हैं अंदर जावे हजम हो जावे, और अच्छी तरह से खाऊं, मैं खा रही हूं कोई मेरे सामने खड़ा है देख रहा है, तो वो फिर समझते हैं भाई नजर न लग जावे, खाना अच्छा नहीं लगता है, देखते रहते हम क्या खाते हैं, राइट। और बोल है मैं ऐसा बोलूं सब बड़ी ध्यान से सुने, सब देखे मैंने क्या बोला, वो बोले मैंने क्या बोला, पर खाऊं कोई देखे नहीं मैंने क्या खाया। ये इस तरह से भी कर्म मुख ऐसा भी काम करता है, और मुख बाबा के मधुर बोल सुन के भावना यही होती है, हीरे मोती बाबा ने जो दिए हैं, बाबा ने टाइटल दिया है, बच्ची तुम्हें ज्ञान रत्नों की खान हो, ज्ञान रत्नों की खान हो, तो मुझे अपने अंदर को खोजना है, खोदना है, ये रत्न है, गहराई में जाने से रत्न मिलेंगे, तो वो मैं बराबर ऐसे रत्न, और जो भी कोई बात भोजन भी खाऊं रत्न चुगू भी सही, और भोजन भी खाऊं तो मुख में शुद्ध भोजन जाए, बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन जाए, भोग लगा के भगवान का प्रसाद ही खाएं, कोई भी चीज ऐसे ही बाहर से उठा के ना खा लेवे, खावे तो भी पहले दृष्टि देके, तो दृष्टि ने काम किया ना, आंखें ने सिर्फ रंग नहीं देखा, आंख ने बाबा का भोजन देख करके बाबा को याद करके जो भोजन खाया उसमें स्वाद और बढ़ जाएगा। इधर उधर बुद्धि मन को भटकाने की बजाय बाबा की याद में भोजन खाएंगे, कहेंगे बाबा आप भी आ जाओ मिल के खाते हैं, आप सामने देखो मैं कैसे खाता हूँ या आप मुझे खिलाते हो। तो बात करते वैसे बात करके नहीं खाएं, पर बाबा से बात करते भले खाएं। तो खा भी रहे हैं और बाबा से मन की बात भी कर रहे हैं, तो मन भी काम कर रहा है, मुख भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है, बाबा से योग लगा के बैठी एकाग्र भी है। तो मन ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री दोनों इकट्ठे हुए उसका नाम कर्म योग है। ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री उनमें दोनों में एक ही तरह का स्वभाव हो, एक तरह का भाव हो तो कहेंगे कर्म योग है। प्यार से कर्म कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं। कान से सुने तो जो भी कुछ आपस में बात करते हैं, बाबा की रू रिहान बाबा के ज्ञान का ही वर्णन करें, रुचि से जो कोई अच्छी बात समझा रहे हैं, हृदय में खुशी होवे अरे कितना अच्छा रतन है, कितनी अच्छी बात सुनाई है, तो कान प्रसन्न हो जावे, अपसेट ना हो जावे, जो अंदर मेरी सीट को भी हिला देवे ऐसा ना होवे। तो कर्म करते हम कर्म योगी बन के रहे, कर्म इंद्रियों का राजा, शरीर रूपी रथ पर पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जबान मुख और ये त्वचा, क्योंकि ये टच करती है ठंडा है या गर्म है। शरीर जो है पानी डाला हाथ में गर्म है कि ठंडा है, महसूस हुआ हवा ठंडी है कि गर्म है, इसे ज्ञान हुआ। और बाकी एवरीडे की एक्टिविटी शरीर की कर्म इंद्रियां जो भी कर्म कर रही है, तो हम हाथ पैर नित्य कर्म की जो इंद्रियां हैं, कर्म तो करते हैं स्वाभाविक रीति से कर्म करने, पर राजयोग सीख रहे हैं तो कर्म इंद्रियों का राजा बन करके सीख रहे हैं। तो कर्म करते कर्माती तो अच्छा भाई योग लगावे, जितना योग लगाए और कर्म नहीं करे कमाई कैसे होगी। कर्म करके ही कमाई होती है। योग से पास्ट कर्म वैदिक कर्म विनाश होते हैं और संगम पर बाबा जो हमको श्रेष्ठ कर्म ज्ञान सहित योग युक्त निश्चय बुद्धि हो करके समझ से यज्ञ सेवा अर्थ प्यार से जो भी कर्म करते हैं उसमें इतना बाबा के लिए प्यार समाया हुआ हो, याद में बाबा के करें तो कर्म में योग भर जावे, योग में रह के कर्म करे या हमारे कर्म में योग भर जाए, फिर वो कर्म करते देखे याद आवे बाबा का हमने जो भी कर्म देखा उस कर्म में हमारा योग लग गया, बाबा ने आकर के अनाज साफ करते थे हम जब माउंट आबू में, एक बोरी कर्म अनाज की निकाली पांच आठ बैठे हैं खाने सफाई करने के लिए, समझा एक घंटा लग जाएगा, बाबा मामा ने पास किया या बाबा मामा को पता चला आज अनाज निकाला है साफ करने के लिए, दाल निकाली है, चावल निकाली है साफ करने के लिए। बाबा मामा भी आकर के बैठ जाते थे, बाकी भी थाली उठा के ले आते थे, बैठ जाते थे। जो काम एक घंटे में होना होता वो 10 मिनट में हो जाता था। तो बाबा ने जो कर्म किया हमारे, हमको भी कर्म योगी बना दिए। और आज वो याद आ जाता है कि बाबा ने कैसे प्यार से शांति से यज्ञ की सेवा कितनी लगन से की। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म, भक्ति के कर्म में कर्म कांड है, रसम रिवाज है, रसम अनुसार कर्म, जो रीत चली आती है उस अनुसार ही कर्म करते हैं। भक्ति की कर्म कांड उसमें, और ज्ञान में वो रिचुअल है, जो दूसरे कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, उसमें ज्ञान नहीं समाया, इसलिए योग भी नहीं समाया हुआ। जिसने सिखाया देख के कर रहे हैं, परंतु ये जो ईश्वरीय ज्ञान मिला तो बाबा को याद करके आत्मिक स्थिति में स्थित होके कर्म करना है। मैं आत्मा कर्म कर रही हूं, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का राजा हूं, और उस राजा के साथ तीनों रानियां बड़ी सब साफ हार्मनी वाली है। दशरथ की 3 रानियां थी ना, तो शरीर रूपी रथ का राजा आत्मा फिर रानियों सहित ही कर्म करता है। तो कौशल्या, कुशल बुद्धि, जितने जितने बुद्धि कुशल होगी, क्लियर होगी, समझदार होगी, तो वो जो भी कर्म करेगी आराम से प्यार से बाबा की आज्ञा अनुसार कर्म करेगी। उस कर्म में स्वाभाविक रीति से मर्यादा होएगी, रेस्पेक्ट होगा। भाई कौशल्या ने तो राम को जन्म दिया, राम का कर्म सृष्टि असुरों को नाश करने का, विनाश करने का। सुमित्रा ने धोक को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो हमारे संस्कारों में अगर स्नेह मिलन की रास होती रहती है, मित्रता भाव है, प्रभु से भी प्रेम है, आपस में भी एक दो को सहयोग देने की भावना है, तो हमेशा लक्ष्मण तो राम के साथ ही रहा। लक्ष्य हमारा मन जो है हमारे लक्ष्य में टिका ही रहेगा, मन भटकेगा नहीं, रूहानी सेवा में ही रहेगा, रक्षक बन करके रहेगा। और शत्रुघ्न वो इतना पावरफुल स्टेज होगी, जो माया हमारी दुश्मन अथवा रावण हमारा शत्रु है उसका विनाश करने वाला होगा। तो हमारे फिर वो जो कह कही, किसने कही, क्या कही, कैसे कही, कब कही, वो मंत्र के प्रभाव में आ गई, मन के व्यर्थ चिंतन में आ गई। जब मन व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ की बातें करता है, ईर्ष्यावश, वैर विरोधवश, क्रोधवश अथवा दोषवश, तो राज मिलते मिलते 14 साल डिले हो गया। और आपको तो 14 साल की भट्टी 4 दिन में करके जानी है। तो 14 वर्ष 4 देर नहीं लगानी है, परंतु और ही नजदीक ले आना है। राम तो मेरा तो राम कोई राज, परंतु 14 साल डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? ईर्ष्या बीच में आ गई। क्यों? क्या कई के साथ साथ मन जो था वो मन माना भाव में नहीं था। बुद्धि और संस्कार अच्छे होते भी वो जो तीसरी रानी मनमत वाली, मनमत परमत पर चलने वाले मंत्र और के कई का मतलब क्या? क्या कही? क्यों कही? किसने कही? इसने कही? मैंने कही? परमत पर चलने वाली और मनमत पर चलने वाली मंत्र क्या कही? तो ध्यान रखना। इसलिए पहला मंत्र आज बाबा ने कहा, ये वशीकरण मंत्र है, मन मना भव। तो कर्म करते हुए मेरा मन बाबा में ही लगा रहे। ये बाबा ने मुझे सुंदर सौभाग्य दिया है, मेरा भाग्य बनाने के लिए इन कर्म इंद्रियों को राजा बनाया है। प्रकृति को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये शरीर 5 तत्वों का मिला है, सब अंग ठीक काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं ये प्रभु के संग में रह करके सब अंग भगवान के रंग में रंगे हुए हों। दृष्टि में परमात्म दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। तो कर्म करते हुए भी हम कर्म योगी बन करके रहे। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा मन बुद्धि बाबा की तरफ ही लगा रहे। तो अपने पर अटेंशन और चेकिंग, अपने पर अटेंशन होगा और मनसा में चेकिंग होगी कि चेकिंग हो, अटेंशन होगी तो तभी चेकिंग होगी। अटेंशन नहीं है तो चेकिंग नहीं है। और अगर अटेंशन है और चेक कर लिया तो कर्म सहज ही, अगर व्यर्थ चला भी गया मन कहीं, राइट रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए कर्म सन्यासी हम नहीं है, हम कर्म योगी हैं। और कर्म योगी होते राजयोगी है। कर्म तो सारी दुनिया करती है, योग नहीं है तो कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कर्म भोगी बन जाते हैं। कर्मों का भोग भोगना पड़ता है या फिर विकर्म करके विकारी कर्म की भोगना। क्यों हुई? क्योंकि कर्म में जो भी है उसका जो असली लक्ष्य है वो सामने नहीं है। कर्म का लक्ष्य क्या है? कि हमारा कर्म श्रेष्ठ होके सुखदायी बने। कर्म इंद्रियां जो मिली हैं वो भी वास्तव में जिस कर्म के लिए मिली है वैसी मेरी ये कर्म इंद्रियां उस गुण को लेके कर्म कर रही हैं। आंखों का काम देखना है तो मेरी तीसरी आंख खुली हुई है। कर्म करते हुए भी मेरी तीसरी आंख खुली है। कर्म करते तो ये काम, ये चीजें देख रही हूँ, बाहर की देख रही हूँ, पर तीसरे का नेत्रा जो खोला तो वो मुझे कर्म योगी बनाएगी। ये कर आंखें सिर्फ देखते हैं तो पर दर्शन सिखाती है। ये जो बाहर का मुख है, बाहर मुखता वाला मुझे योगी नहीं बनने देता। बाहर मुखता से कर्म दिखावे का कर्म होता है, या स्वार्थ से कर्म होता है, या काम चलाओ कर्म होता है, या किसी को खुश करने के लिए थोड़ा कर्म दे देते हैं, कर लेते हैं, या कभी डर चिंता से करते हैं कोई नाराज ना हो जावे, इसीलिए मैं थोड़ा मदद कर देती हूँ, या मैं करती हूँ, सब कहेंगे हाँ बड़ा अच्छी मदद करती है, करता है, जब भी बुलाओ ना तब आ जाता है। फिर अगर थोड़ा किया कि ठीक नहीं किया, अच्छा किसी और को बुला लो जो अच्छा करेगा। तो कर्म में कोई लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं है, स्वार्थ में अथवा नाम मान शान के हिसाब से कर्म इंद्रिया कर्म करे तो वो कोई कर्म का फल सुख नहीं मिलता। और कभी फिर कर्म इंद्रियों से, यही जो कर्म इंद्रिया अथवा ज्ञान इंद्रिया है, आंखें मिली है, कुदरत कभी ईसोगात है, दृष्टि अच्छी है, दृष्टि दिव्य दृष्टि है साथ में, तो मैं स्वदर्शन चक्र चलाती रहूं। पर दर्शन नहीं, आंखें इसलिए नहीं मिली है कि दूसरे का दोष देखते या दोष निकालूं या दोष दूं, नहीं, ये गुण ग्राही दृष्टि आंखें इसीलिए मिली हैं कि हर चीज के अंदर अच्छाई देखे कर्म करते हुए। गुण ग्राही दृष्टि हो दूसरों के साथ में रहते, बाहर मुखी, ये बाहर का मुख है, आंख कान जबान नाक चेहरा बाहर का मुख है, जो बाहर की इंफॉर्मेशन लेके अंदर का जो मन बुद्धि और संस्कार है उसको प्रभावित करता है। बाहर का देख के, दूसरे का देख के, अच्छा देखा या बुरा देखा, परंतु अंत और वो फिर जो बाहर से देखा, पर दर्शन देखा, फिर पर चिंतन चलेगा, फिर पर मत पर चलेगा, श्री पर अंतर्मुखी श्री मत पर चलेगा, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि बाहर का जो रूप है वो कोई श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि से नहीं किया, टेम्पररी किया, टेम्पररी कुछ खुशी मिली, मान मिला, दूसरे बारी मान नहीं मिला, दुखी हो गए। एक बारी सफलता मिली, दूसरे बारी नहीं मिली, परेशान हो गए। पर अंतर्मुखी में मन आत्मा का जो मुख है, मन का संकल्प, मन का संकल्प, मन का बोल है, मन में बाबा से बात करता रहे, मन में बाबा से बात करेगा तो मन खुश होगा। बाहर वाला मुख बात करेगा तो थोड़ी महिमा करेगा परसेंटेज में, प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा, अगर आपको कोई कहे इसकी क्या विशेषता है, कहते बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़े खुश रहती है, तो दो बातें सुनाएंगी, या सहयोग अच्छा देती है। और अगर अब गुण वर्णन करना हो तो चार कहानियां सुना के वर्णन करेंगे, वो आधा घंटा लगेगा, और गुण वर्णन करना हो तो आधा मिनट में वर्णन कर लेंगे। कितना फर्क है, वो जो मुख से बोला तो आधा घंटा विकल्प व्यर्थ, बाहर मुख वाला बाहर की बातें, इसीलिए यह बहुत अंतर है। अंतर्मुखी और बाहर्मुखी स्थिति में कर्म करने में बहुत अंतर है। बाहर के भाव में सुकर्म कम है, दिखावा बहुत है, और अंतर की स्थिति में श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कमाई है, अपने लिए भी कमाई कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे संग से, हमारे उत्साह उमंग से दूसरे अंदर भी उत्साह उमंग आ जाता है, अच्छा कर्म होता है, सीखने की भावना आती है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट पैदा होती है मन में। तो हमको कर्म करते ये ईश्वरीय वरदान से प्रकृति के सौगात के रूप में जो अंग मिले हैं, ये तो अच्छाई देखने के लिए मिले हैं। बाबा ने तो कहा, मैं तो तीसरा नेत्र देता हूं जब तुमको आत्मा को आत्मा ही देखना है। मैं आत्मा इस शरीर से न्यायी चैतन्य ज्योति बिंदु, मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, मुझ आत्मा का कर्म ही। बाबा से योग लगा के कर्म करने में कर्म योगी है। तो अंतर्मुखी में जो दृष्टि है वो दिव्य बन जाती है, मन शुद्ध और शांत, बाबा से बात करते करते मधुरता भर जाती है। इसीलिए बाबा के बोल सुनते अंदर मंथन चलना शुरू होता है, मन ज्ञान का मंथन करता है, अथवा बाबा की महिमा दिल से निकलती है, हिम्मत बढ़ती है, स्वमान जागृत होता है, बाबा की बातें सुन के खुश होते हैं। कोई दूसरी आत्माएं निंदा करेगी, कान सुनेंगे, अपसेट हो जाएंगे, कोई और ने किसी की गलती दिखाई तो तीनों दोस्त बन जाते हैं, कान आंख और जबान। कान ने सुना तो फिर दूसरी वाली आंख उसी दृष्टि से देखती है, हाँ इसको कहा था ये व्यक्ति सावधान रहना, ये बड़ा धोखेबाज है, समझा, वो वैसी भावना से देखने लग जाते, विश्वास कम हो जाता दूसरे पर, और फिर दूसरे को सुनाएंगे, मैंने सुना ही ऐसा है। तो कान आंख और जबान दोस्त बन करके गपशप करने लग जाते, पर चिंतन करने लग जाते, तेरी मेरी चुगली करने लग जाते, उससे कर्म का हिसाब किताब नया बन जाता है। तो हमको ये देखना है कि मैं कर्म योगी बन करके श्रेष्ठ कर्म भी कर रहा हूं, और बाबा से योग लगा के इतनी शक्ति अपने में भर रहा हूं जो विकर्म विनाश भी हो रहे हैं, वीकनेस खत्म होती जाती है, संस्कार शुद्ध बनते जाते हैं, श्रेष्ठ बनते जाते हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो सवेरे से लेके शाम तक की दिनचर्या में बाबा ने कर्म किस स्थिति में करो ये करना सिखाया है। अमृत वेले उठते ही जो पहला कर्म, पहले उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करें, वो बाबा से गुड मॉर्निंग किया होगा तो कोई ना कोई बाबा की बात टच होगी, बाबा भी कहेगा गुड मॉर्निंग बच्चे, तो गुड को तो वास्तव में गुड ही रिटर्न में मिलेगा ना। ओम शांति बोला तो बाबा भी शांति की शक्ति भर देगा अंदर। कहते भी है भाई आज सवेरे उठ के पता नहीं किसका मुंह देखा, सारा दिन अच्छा नहीं गया, तो मैंने उठ के किसका मुंह देखा, किसी की कोई बात मुझे याद आई, उसका चेहरा याद आया, या अपना मुंह देखा तो देह अभिमान आया, राइट। तो ये भी देखना है कि मैं उठते ही मुझ मैंने आत्मदर्शन किया, उठने का कर्म किया ना, आंख खुली, तो आंख खुली तो मुझे तीसरी बुद्धि का जो नेत्र है, ज्ञान का नेत्र खोला, आंख तो खुली, उठने का काम हुआ ना, आंख खुली, पर मेरी तीसरी आंख भी खुली कि नहीं। मैंने फिर अपने आप को आत्मिक दृष्टि से देखा, तो नेचुरली आत्मिक दृष्टि से देखूंगा तो मुझे बाबा परमात्मा की याद आएगी, और मेरी दृष्टि अथवा ज्ञान का नेत्र और या बुद्धि, बुद्धि फिर नेत्र है ना, वो बाबा से मिला हुआ कल की मुरली, वरदान, प्रश्नोत्तर, या कोई मुरली की बात बहुत अच्छी लगी, या कोई क्लास की बात याद आई, तो बुद्धि में ज्ञान का ही मंथन होएगा। जैसे कहते हैं ना, अगर सवेरे सवेरे जो कोई न्यूज पढ़ो वो न्यूज सारा दिन याद रहती, सवेरे अखबार में जो पढ़ा वो सारा दिन ऐसे एक दो को वर्णन करते रहेंगे। तभी कहते हैं सवेरे उठ के एक टेलीफोन खोल के देखना क्या किसने भेजा समाचार, या अखबार पढ़ने वाले अखबार पढ़ते। तो सवेरे सवेरे मैंने बुद्धि योग, आंख को कहाँ लगाया, बुद्धि को कहाँ लगाया, समय को कहाँ लगाया। तो कर्म, कोई भी कर्म है, कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते, ना आत्मा कर्म के बिना रह सकती है, और ना कर आत्मा शरीर में है तो कर्म इंद्रियां कर्म के बिना रह सकती है। विश्राम करना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, पकाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। तो ये कर्म इंद्रियों के कर्म और ज्ञान इंद्रियों के कर्म में जितनी जितनी शुद्धि बढ़ती जाती है तो वो जो व्यर्थ है वो खत्म होता जाता है, विकर्म भी खत्म होता है, व्यर्थ भी खत्म होता है, विकल्प भी खत्म होता है। तो बाबा का जो मंत्र है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, अच्छे बोल, कम ही बोले जाते हैं, और जो शुभ भावना, शुभ कामना वाले शब्द होते हैं वो बाहर के नहीं होते, वो अंदर की भावना के होते हैं, थोड़े भी पावरफुल होते हैं। तो और फिर अंदर भावना प्रेम भरी है, कल्याणकारी है, तो ऑटोमेटिकली धीरे से बोलेंगे, गुस्सा करके नहीं बोलेंगे, गुस्सा करके बोलेंगे जोर से बोलेंगे, नाराज होके बोलेंगे फोर्स से बोलेंगे, अहंकार होएगा रोब से बोलेंगे। परंतु जब आत्मा की स्थिति में स्थित है तो हमारे बोल ऑटोमेटिकली कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कर्म कैसे हों जो खुद को भी सुख देवे, दूसरे को भी सुख देवे। तो सुख दो, सुख लो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये ऐसे हाथ करके दुआ देने की बात नहीं है, ये ऐसे करके दुआ देने की बात नहीं है। धीरज, भले ऐसा हाथ है तो धीरज का, शुभ भावना का या वरदान का। दुख लेने की कईयों को आदत पड़ गई है या स्वभाव बन गया है अपने आप को दुखी करने का। किसी ने कोई एक बारी बात बोली और वो बड़ी जबरदस्त बात थी, कड़वी बात थी, सुखदाई नहीं थी। सचमुच ऐसे लगा जैसे किसी ने चाकू से चीर लगा दिया। और कभी कहते हैं ऐसी खराब बात बोली, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, कब बोली थी? अरे 15 साल हो गए ये बात कही थी। मेरे तो मन में एकदम बैठ गई है, वो दुखी कर दिया मेरे मन को। गंदी बात थी, अच्छी बात नहीं थी, खराब बात थी। हाँ सचमुच बड़ी खराब थी बात। कह रखी दिल में, देखिए अरे तेरा मन किचड़े का डब्बा है क्या? खराब बात है तुमने मन में रखी, अच्छा कर्म किया, अच्छे बुद्धि ने फैसला किया। मन को मंदर बनाना है कि मन को कूड़ादान बनाना है? भारी होगा ना मन, किचरा रखेगा तो दुखी करेगा ना मन। तो दुख लेने की आदत पड़ गई है ये। एक बात किसी ने दुख दिया, फिर एक को सुनाया, फिर दूसरे को सुनाया, वो जिस तरह से दुख मिला था वो दुख फिर प्रकट हो जाता है। तो वही चाकू जो एक बारी लगा था किसी की जबान से, वो तेज था, वही वाला चेहरा भी बताता है। इतना गुस्से से चेहरे का पता चलता है कि कैसा बोला था। तो उसका असर हमारे पर ही पड़ेगा ना, हमारे चेहरे नहीं तो ऐसा चेहरा बनाया ना। जबान से वो वर्णन भी किया, तो मैंने उसी जगह दूसरा चीर लगाया, तीसरे बारी बोला तो तीसरे बारी चाकू मारा। किसी ने तो एक बारी मुझे बोला और मैंने 50 बारी बोला, तो वो हिसाब किसने किसके साथ बनाया? दूसरे के साथ एक बारी बना था, मैंने अपने साथ 50 बारी बनाया। तो मैं ये देखूं पिछला खत्म करना है कि पिछले को 50 बारी 100 बारी बढ़ा देना है। फिर मैं कहती हूँ बाबा से योग तो कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी लगता ही नहीं है। वो कर्मों का हिसाब किताब विघ्न डालता है, कर्म करते भारीपन लगता है, बोझ लगता है, ऑर्डर लगता है। मालिक बन के मेरे को ऐसे कर्म करवाते हैं जैसे मैं इनकी नौकर हूं। बुद्धि पता नहीं कैसे सोचने लग जाती है, ये तो कंट्रोल करते हैं, सारा सोच ही बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है। तो अगर मैं बाबा की स्थिति में मन को मंदर बना के रखा, तो मन के अंदर मेरी ज्योत तो जगी रहे ना। मंदर मन के अंदर, भक्ति की रसम बनी हुई है। मंदर में जाओ, जूता उतार के जाओ, चप्पल उतार के जाओ। तो मन के अंदर हम जाते हैं और ये बड़ी चप्पल साथ लेके चले जाते हैं। शरीर बनते बने नहीं, वो बाहर का जूता मंदिर में उतार के गए, अंदर वाला साथ है, बाहर वाला लेके गए। चप्पल पैर का जूता तो उतारा पर बड़ा जूता नहीं उतारा। तो तेरा मेरा पर चिंतन से लेके आए ना मंदिर से भी। अपने आप को देखे कि मैं जब मन के अंदर मन मना भाव में इस मंदिर में बैठी हूँ तो अंदर में कर्म करते बात करते मेरा मन का संकल्प और भावना कैसी है। तो कर्मों का नमय कर्म नहीं बनेंगे। कर्मातीत बनने का मतलब पिछले विकर्म विनाश करना। कर्म योगी बन के श्रेष्ठ कर्म करना। अतीत के कर्म जो पास्ट के किए हुए कर्म है 63 जन्मों के वो खत्म हो जावे। कर्म बंधन खत्म हो जावे। तन के बंधन, मन के बंधन, धन के बंधन, समाज के बंधन, रस्म रिवाज के बंधन, कर्मों के बंधन, वो अनेक प्रकार के जो बंधन बंधे हुए हैं वो मुक्त नहीं होने देते। तो हमको फिर तन को भी ईश्वरीय सेवा में सफल करें, मन को भी ईश्वर में लगाएं, धन भी ईश्वरीय सेवा में सफल करें, रूहानी ईश्वरीय सेवा में जो रसम रिवाज मिला है, बाबा ने मर्यादाएं सिखाई हैं, वो हम करें तो दुख देने का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी हमने दुख लेने के दरवाजे सारे खोल दिए, कान भी खुला है तो आंखें भी खुली हैं, तो तेरी मेरी बात सुन करके मन और बुद्धि तो और भी ज्यादा खुल जाती है। इसलिए मेरा लक्ष्य पक्का रहे, ना दुख दूं, वो तो ध्यान रहता है, पर अपने को भी दुखी क्यों बना रही हूं। तो दुख देना भी नहीं है तो दुख लेना भी नहीं है। मंदिर में तो जाके कीर्तन करते हैं तो मैं मन के अंदर जाके पहले बाबा की महिमा गाना शुरू करूं, भाग्य की महिमा शुरू करूं। कीर्तन करना है, जोत जगानी है, माथा टेकना है, क्या मतलब है? कोई ऐसा नहीं कि ये माथा जाकर के जमीन से लगाना है, मथे में टिक जाना है। तो कर्म करते ऐसे ही समझे कि मैं माथे में आत्मा टिकी हुई हूं, चैतन्य ज्योति हूं, बाबा की शिव शक्ति हूं, पांडव हूं, परमात्मा का कंपेनियन हूं, तो वो मेरे को संग का रंग, भगवान का संग मिले, भाग्यवान आत्मा हूं, ईश्वरीय ज्ञान के संग का रंग लगाए, रंगरेज की भट्टी में बैठा हूं। तो अपने आप को बताया ना, तो धोती की भट्टी में साफ करने के बजाय मैल अपने पास रख ना दूं। चलो किसी ने कहा मेरा कपड़े के ऊपर मैल दिखाई पड़ने लगा, कपड़ा धोया है तो पानी फेंक दूंगा ना गंदा, या रखूंगा? वो पानी फेंक के अच्छा पानी और डालूंगा, साबुन अच्छा रखूंगा। तो देखो पहले जिस समय शुरू शुरू में हम बाबा के पास आए तो 3 तरह का साबुन होता था। एक था साबुन लक्स साबुन, तो लक्ष मेरा कैसा है, स्वच्छ करने है, लक्स साबुन। दूसरा साबुन होता था सनलाइट, तो लक्ष मेरा है कि मुझे गंदगी नहीं रखनी है, ना अपनी ना दूसरे की, मन स्वच्छ रखना है। ये योग की भट्टी में मुझे मन को स्वच्छ रखना है, मन मना भाव में स्थित होना है। कोई अभिषेक व्यर्थ बात आ भी गई तो बार बार ये नहीं वो सोचो, व्यर्थ को सोचो नहीं, उसके बदले कुछ और अच्छा सोच दो, कल की मुरली सोच लो, उठ के कुछ पढ़ लो तो मन का विचार बदली हो जावे, कोई सॉन्ग चलाओ तो उसका मंथन चले, विचार बदलियों में तरीका चाहिए ना अपने आप को स्वच्छ करने का। तो दूसरा था सनलाइट, तो बाबा ज्ञान का सूर्य है, वो चमकता है। कपड़ा धुलाई करके बाहर धूप में डालो, आप देखेंगे उसमें चमक आ जाएगी। बरसात में सुखाओ, कपड़ा पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो वो जो अंदर इमोशंस में रह करके साफ नहीं होता, बाबा ज्ञान का सूर्य है, हमको सृष्टि की आदि मध्यंत का ज्ञान दी है, समझ दी है, मैं किचरा क्यों रखूं। तो अपने आप को इतना स्वच्छ बनाए, शुद्ध बनाए, तो हमारी आत्मा फिर उसी बाबा के संग से ऑटोमेटिकली ईश्वरीय ज्ञान के गुणों का रंग लग जाएगा ना हमको। संग के रंग में ज्ञान का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग, पवित्रता का रंग, आनंद का रंग, सुख का रंग, इस रंग में सतरंगे रंग में रंग जाएंगे ना। आत्मा ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगी, परमात्म ज्ञान की योग की शक्ति से चमक जाएगी। तीसरा सोप होता था लाइफ बॉय, लाइफ बन गई, वो जो लाइफ दुखी थी लाइफ सुखी हो गई। बाबा ने अपना बच्चा बना के हमारी तो लाइफ ही बना दी, सारा जीवन बदली कर दिया। तो अंदर खुशी की लहर आएगी, नई आएगी, कर्म अच्छे होंगे, नवी बन जाएगी लाइफ। तो यही ध्यान रखे, कुछ भी सवेरे से उठते हैं कर्म, उठने का कर्म है, मुंह धुलाई करते हैं, दर्पण में देखते हैं तो खाली चेहरा ना देखे, इन आंखों से मैं आत्मा स्मृति का तिलक लगाऊं, सिर्फ बॉडी को शरीर को नहीं धो रही हूं, आत्मा को बाबा स्वच्छ बना रहे, बॉडी को वाश सोप या पानी स्वच्छ बना रहे, भोजन क्लास में जा रही हूं, रूहानी नशा है, गॉडली स्टूडेंट हूं, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने जा रही हूं, तो कदम भी जो उठेंगे वो बाबा की स्मृति से कदम उठेंगे। गॉडली स्टूडेंट, भगवान पढ़ाता है, बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा मेरा टीचर है, तो जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पर कर्म में योग भर जाएगा। खाना बना रहे हैं, बाबा को भोग लगाना है, ब्रह्मा भोजन बना रही हूं। तो जैसे गुरुवार का भोग कितनी शुद्धि से बनाते हैं, रोज का भोग भी इतना शुद्धि से, सफाई से, स्वच्छता से। तो भोजन बनाते, भोजन खाते, ऑफिस में जाते हैं, बेशक काम करने का है, जॉब करना है, पर वहां ऑफिसर या जो हमारे साथ में कलीग या काम करने वाले, उनका संस्कार कुछ ऐसा है, कहते क्या करूं, काम करना पड़ता है ना, पर फलाना जो मेरा है ना काम करने वाला, भाई पता नहीं क्या मेरा कर्म का हिसाब किताब इसके साथ है। तो मैंने कर्म कर्म क्या कि कर्म का बंधन पक्का कर दिया, नहीं ड्रामा देखने जा रहा हूं, कोई ने काणे धोबी का पाठ बजाना है, कोई ने रावण का पाठ बजाना है, या डिज्नीलैंड में जा रहा हूं, कोई ने शेर की ड्रेस पहनी है, कोई ने भालू की पहनी है, कोई ने बंदर की पहनी हुई। कॉन्शियस अगर जितनी जितनी श्रेष्ठ है, समझ अपने आप को समझाने की शक्ति जितनी अच्छी है, तो साधारण कर्म करते भी कर्म साधारण नहीं होगा, कर्म श्रेष्ठ भी होगा, बाबा की याद में होगा। कर्म योगी बन करके कर्म करेंगे तो पिछले कर्म भी विनाश होंगे, और श्रेष्ठ कर्म अभी करेंगे प्रेजेंट भी बनेगा, भविष्य भी सुखी होगा। कोई कोई कहते हैं योग तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं फिर दुख क्यों हो गया, अगर वो योग अच्छा लगा तो वो तो पिछला कर्जा जो था उसमें चुकतू हो गया, नवा क्या किया है, जो उसकी खुशी होवे ना। तो डबल कमाई करनी है। अगर मानो हमारे पास कर्जा 10,000 का है, कमाई 1,000 की है, घर खर्च में ही 5,000 खत्म हो जाते हैं, 5,000 का कर्जा दिया तो बाकी तो जीरो बचा ना। तो देखे मैं कमाता कितना हूँ, खर्च कितना करता हूँ, जमा भी होवे खर्च भी होवे परंतु जमा ज्यादा होवे। तो जितना जितना श्रेष्ठ कर्म में हमको जमा करने का खाता बढ़ेगा और कर्मों पर ध्यान रहेगा कि वह एक समय का अभी का कर्म वे कर्म का बोझ ज्यादा है, पिछला तो भक्ति में अज्ञानता से किया, तो अभी कर्म का भी ज्ञान है, योग का भी ज्ञान है, बाबा की शक्ति का भी नशा है और स्वमान में रह के कर्म करना है। अभिमान में कर्म करते हैं उल्टे खाते में जाता है, स्वमान में करते हैं जमाओं में जाता है। तो कर्मातीत का मतलब मेरे अपने विकर्म भी विनाश होवे और दूसरे के विकर्म का मेरे पर असर न पड़े, दूसरे की कमजोरी में मेरे से कमजोरी ना आ जावे, तो कर्म करते कर्मातीत बन जाएगी। कर्म फिर ऐसे हो जो दूसरे को प्रेरणा देवे तो कर्मातीत बन जाएगी। कर्म इंद्रिया आत्मा की भी शुद्ध तो शरीर की भी शुद्ध, तो सतयुग में सुंदर शरीर मिलेगा। कर्म नेचुरली न्यूट्रल होंगे। ओके, टाइम के हिसाब से अभी बंद करती हूँ। ओम शांति।